हरे कृष्ण। तो आप सब हम स्वागत करते हैं। आज संडे छुट्टी वाले दिन आप लोगों ने समय निकाला भगवान के मंदिर में आने का, और आप सब लोग जो कि अपने अपने काम धंधे से एक दिन छुट्टी मिलती है हफ्ते में एक दिन, आज से एक दिन कई जगह पर 7 दिन में मिल रही है ना, 7 दिन भी काम करना पड़ता है। अगर कोई एमएनसीज में है तो उसको 2 दिन छुट्टी मिल जाती है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, फिर भी बहुत सारा समय होता है हमारे पास, लेकिन ज़्यादातर सारा समय हमारा ऐसे समय में बीतता है जहाँ पर हमारे 24 घंटे ज़्यादा ऐसी चीज़ों में बीतते हैं, ऐसे समय से बीतते हैं जिसमें ज़्यादातर मन की उथल पुथल रहती है नहीं, और उस उथल पुथल से होता क्या है कि उसके जो इम्प्रेशन हैं, जो संस्कार हमारे मन में छप जाते हैं, फिर जब खाली समय हम बैठते हैं तब सारी चीज़ें जा रहा है। इसलिए जब लोग मंदिर भी आते हैं कभी कभार तो मंदिर में भी चिंता कहाँ की होती है, घर की होती है या अपने बिजनेस की होती है, अपनी स्टडीज की होती है, क्योंकि तो हमारा पूरा समय उन्हीं चीज़ों में बीतता है। और फिर जब हम लोग मंदिर जैसी जगह पे आते हैं तो होता क्या है कि उन्हीं सब चीज़ों का चिंतन होता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमें मन की शांति मिली, हम लोग खुश हुए। हफ्ते में एक दिन मन की शांति के लिए आते हैं कुछ लोग मन की शांति के लिए रोज आते हैं। तो इस प्रकार लोगों ने अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ, और ज़्यादातर आप देखेंगे मंदिर में आने से कितने लोग कहते हैं शांति प्राप्त होती है, हर खड़ा गया वेरी गुड, और बाहर ज्यादा रहने से कितने लोग कहते हैं मन डिस्टर्ब रहता है। तो हमें कहाँ रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए, मंदिर बाहर रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए। तो सब लोग हम लोग चाहते हैं, इसलिए आप सब ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में बिताएं, क्योंकि मन की शांति इसलिए बोला जाता है क्योंकि मन हमारा जो है बड़ा चंचल है, और सुबह से लेकर शाम तक हम जितना भी अपने मन को खुराक देते हैं, जो फूड देते हैं, वो केवल वो देते हैं जो हम लोग संसार में देखते हैं या जो चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती हैं, उसकी वजह से जो हमारी डिजायर्स बनती हैं और उसकी वजह से जो है मन परेशान रहता है। लेकिन मंदिर में आके ज़्यादा डिजायर्स नहीं, तो कई बार लोग जब ज़्यादा मंदिर आते तो भी उनकी कुछ ऐसी यहाँ पर आके डिजायर्स बन जाती हैं, जैसे जब यहाँ पर आता है तो उसको कई बार क्योंकि नज़र तो वही है ना, इधर पर जो देखते हैं, यहाँ पर भी आकर जो है एक दूसरे के ड्रेस को देखकर कई बार लगता है मेरे पास ऐसी नहीं है, मेरे पास ऐसी होनी चाहिए। कई बार बाहर निकलते हैं, अंदर आते समय दूसरे की गाड़ी दिखाई देती है तो लगता है काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती तो मंदिर में ऐसी गाड़ी से आता। तो इस प्रकार कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग मन की शांति मंदिर में महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मन को भगवान का एक ऐसा रूप का दर्शन मिलता है जो सर्व आकर्षक है। हिंदी में अगर बात करें तो सर्व आकर्षक का मतलब है संस्कृत में कृष्ण। कृष्ण तो हिंदू भगवान का नाम नहीं है, कृष्ण की अर्थात जो भगवान की क्वालिटी है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको उस सर्व आकर्षक चीज को बोला जाता है कृष्ण, या दूसरा सांवला काला रंग। तो जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है वो कौन है, कृष्ण। उनको नाम दिया गया कृष्ण क्योंकि वो है कृष्ण, और क्योंकि सांवले रंग के इसलिए वो कृष्ण है, इसलिए भगवान का नाम क्या है कृष्ण। भगवान का नाम जैसे राम हम बोलते हैं, ये राम इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान सबको आनंद देने का एक स्रोत है। भगवान को देखकर सबकी आंखों को, सबके उनके बारे में सुनकर सबके कानों को, उनके मनों को क्योंकि अच्छा लगता है, आनंद आता है, इसलिए उनका नाम राम है। तो भगवान के जो भी नाम है वो उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे माखन चोर, क्यों रखा माखन चोर, क्योंकि वो अमेरिका के डॉलर चुराते हैं, नहीं वो गोपियों का माखन चुराते हैं, इसलिए उनका नाम माखन चोर है। और फिर उनका नाम है यशोदा नंदन, क्यों है ऐसा नाम, क्योंकि वो यशोदा के पुत्र है, देवकी नंदन क्योंकि देवकी गुरु पुत्र है। गिरिवर धारी भी कहा जाता है भगवान को, नहीं अभी हमने जो राधा माधव गाया उसमें गोवर्धनधारी बोला ना भगवान, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत हो रहा है, तो उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके आधार पर भगवान का नाम होता है। हमारे लिए नाम रखे जाते हैं घरों में, नहीं नैन सुख रख दिया, लेकिन पता चला बच्चा बचपन से देख नहीं पाता, या किसी का रख दिया अमीर चंद, पता चलता है सड़क पर क्या कर रहे हैं भीख मांग रहे हैं। तो नाम जो है हम लोग को जो रखे जाते हैं वो हो सकता है कि वो बड़ा होकर अति वैसा ना बने, लेकिन कई बार नाम की प्रेरणा पीछे ये होती है कि कल को अपना नाम सुन सुन के इसको लगे कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा होना है, तो इस प्रकार नाम रखे जाते हैं। लेकिन भगवान के नाम जो हैं वो हैं उनकी लीलाओं के आधार पर। आज के जो श्लोक है चौथे अध्याय के 15 श्लोक भगवद्गीता में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। भगवान एक बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः उन्हें चाहिए कि उन्हें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान हमें बड़ी सुंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए, किन कर्मों को हम करें जिससे हमें कोई समस्या ना हो, कोई दुख ना हो। हम ज्यादातर अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं ऐसे लोगों को जिन लोगों ने इस समाज में बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। जैसे आज हर बच्चा जन्म लेते ही हाथ में क्या होता है, उसके एक बैट होता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है मेरे फादर एक टीवी में एक व्यक्ति को खेलता कूदता देखते हैं और वो बैट से बॉल को मारता रहता है सुबह से शाम तक, इसलिए मुझे भी बड़ा ऑफिसर बनना है। बड़ी क्या शोहरत है उस काम में। फिर देखते हैं बच्चे टीवी चल रहा है, उसमें देखता कोई भीषण भीषण कर रहा है, कोई स्टार है, कोई गोल्ड मेडल जीत रहा है, कुछ कर रहा है, तो अपनी लाइफ का गोल भी वैसे कुछ बनाता है, या फिर पेरेंट्स उसको बोलते कि तुम ये बने। जबकि भगवान ये कह रहे हैं आज के इस संदेश में कि इससे पहले जो मैंने ज्ञान दिया आपको, ज्ञान जो इससे पहले कुछ श्लोक में भगवान ने ना नॉलेज के बारे में बताया कि नॉलेज का मतलब क्या है। हमें जो नॉलेज है वो इस संसार के बारे में नॉलेज है, इसलिए इस संसार के बारे में नॉलेज रखते हुए जिन कामों को हम करते हैं वो भी संसार से रिलेटेड है। 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उससे हमारा शरीर बना, उससे वो सारे इक्विपमेंट्स बने जिसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो इन 5 एलिमेंट्स से बनती है। इवन जो साइंटिस्ट अपनी लेबोरेटरीज में केमिकल्स के रिएक्शंस को भी देखते हैं कि केमिकल्स मिला के कुछ इनोवेट करते हैं, वो भी इस प्रकृति से, इस नेचर से, इस 5 एलिमेंट्स से लिए हुई चीजें। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी देखिए रॉ मटेरियल को केवल मैनिपुलेट किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है। रिसर्च का मतलब है कि दोबारा से सर्च करना किन चीजों को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है समाज में, तो कोई विशेष बहुत बड़ी चीज नहीं कर दी। उन्होंने क्या किया, भगवान के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति को, क्योंकि भगवान कहते हैं माया अध्यक्षेण प्रकृति सूर्य के साथ चराचर, कि ये जो प्रकृति है, जो ये नेचर है, एक तो इसका कॉज भी मैं हूं नंबर एक, और फिर ये जो सारा रॉ मटेरियल मेरे द्वारा एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम मी, सब कुछ मुझसे निकला हुआ है। और फिर लोग कुछ लोग पढ़ लिख कर वेदों में, जैसे 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन वेदाज में हमें हर प्रकार की नॉलेज मिलती है। और फिर इन वेदों को पढ़कर, इन सब चीजों को देखकर साइंटिस्ट लोग दिमाग चलाते हैं, हाँ तो हमारे पास भी हो सकती है वो सब चीजें। जैसे जितने भी लड़ाई के इक्विपमेंट्स हैं आज, इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बना दिए, तो हम लोगों ने देखा है कि उस तरह के बॉम्ब्स या उस तरह के बॉम्ब्स की शक्ति इससे पहले के युगों में लोगों के पास तीरों में होती थी। नहीं, एक तीर में मंत्र बोलते थे और जहां भी मारते थे, जिसको भी कुछ करते थे, हो जाता था काम। एक तीर के अंदर इतनी शक्ति होती थी। या फिर एयरप्लेन जो थे वो थे हमारे पास पुष्पक विमान, जैसे एक पूरी की पूरी सिटी उड़ रही है, उसमें झरने भी हैं, पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। अभी तक इस तरह की चीज हम लोगों ने नहीं बनाई है, लेकिन हाँ 747 तो हमने बना दिया, जिसमें कि 250 लोग बैठ सकते हैं और काफी उसके अंदर जो है फैसिलिटीज दी गई। लेकिन अभी भी ये एक सपना है साइंटिस्ट का, इतना बड़ा विमान बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटीज हैं, जो कि ऑलरेडी शास्त्रों में दी गई है या जो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है या पिछले युगों में हो चुकी है। तो लोग पढ़ते हैं और फिर इस प्रकृति की रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करते हैं और फिर कुछ चीज हमें दिखाते हैं कि ये भी हमने बना डाला, ये ऑलरेडी था, ये सारी चीजें थी। यहां भगवान कह रहे हैं कि इससे पूर्व जन्म में, अर्थात इससे पिछले समय में भी कुछ मुक्त आत्माओं ने इस प्रोसेस को फॉलो किया। किस प्रोसेस को? ज्ञान के प्रोसेस को। इस 5 एलिमेंट से रिलेटेड नॉलेज हमें इस संसार में जो ज्ञान देती है, आप अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं या थोड़ा प्रयास करें, बुद्धि पर जोर जोर डालें, तो देखिएगा जो हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया स्कूल्स में या कॉलेजेस में या बिजनेस में कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली है क्या, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उससे हम क्या चाहते हैं उस नॉलेज से, उसका लक्ष्य क्या है। जो ज्ञान हमारे पास है, जो 15 साल या 18 साल हमने स्कूल कॉलेजेस में लगाया है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है,
सक्सेस,
जीवन निर्वाह, वेरी गुड, और प्रोफेशनल जाना, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना, उसमें कुछ कर दिखाना, मनी, सक्सेस, मनी, ये सब एक जैसे शब्द है, और कुछ जीवन की सुख सुविधाओं को एकत्रित करना। तो कहने का मतलब जो हमने इतना समय लगाया स्टडीज में, जिस संसार की स्टडीज में लगाया, तो उन स्टडीज का अल्टीमेट गोल क्या है, सुख सुविधाओं को अर्जित करना। मतलब जो भी मैं करूं उस करने के बाद, उस चीज को करने के बाद मुझे कुछ चीज मिले उससे, और जो भी चीज मुझे मिलेगी उससे मैं उन सुख सुविधाओं को खरीद सकूं जिससे मैं कंफर्टेबल रह सकूं। अगर हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज इतनी सारी इक्विपमेंट्स बन गए हैं समाज में, इतनी सारी इनोवेशन हो चुकी हैं कि व्यक्ति को हिलने की जरूरत नहीं, सब टच बटन है ना, जस्ट पुश बटन या टच बटन टेक्नोलॉजी आ गई है, एक फिंगर टिप्स पर आपके पास हर चीज है, इजीली अवेलेबल है कि नहीं। साइंस ने हमें इतना ज्यादा बेकार कर दिया है यूं बोले तो, कि हम लोगों को हिलने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि हमें हिलने की जरूरत नहीं है इसलिए जब व्यक्ति हिलता नहीं है वो कैलोरीज उसकी बर्न नहीं होती, उतने से परिश्रम नहीं किया, तो क्या होता है, धीरे धीरे घर बैठे बैठे खा खा कर क्या होता है, नाना प्रकार की बीमारियों में माइट करता है, और जो उसने इतनी मेहनत करी पैसा कमाने में, उस पैसे को फिर उन बीमारियों को ठीक करने में लगाता है, और फिर जो उसका शरीर बढ़ गया जिसकी वजह से हिल नहीं पा रहा, दिक्कत हो रही है, समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं, उम्र जो 100 साल तक व्यक्ति जीता था अभी वो कहां तक जीता है, अब बच्चा पैदा होने के बाद से डॉक्टर्स के घर चक्कर लगाते रहते हैं, बड़ा होता है फिर डॉक्टर के पास, आज क्या फिर डॉक्टर से, बड़ा होगा फिर डॉक्टर, ज्यादा खा लिया फिर डॉक्टर के पास, कम खा लिया तो डॉक्टर के पास, डायबिटीज हो गई तो सब छूट गया। तो हम देखें कि सोशल टेक्नोलॉजीज ने, एडवांस मॉडर्नाइजेशन चीजों ने हम लोगों को इतना सुस्त बना दिया, इतना आलसी बना दिया, कि हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज केवल रामदेव को टीवी पे करते हुए देख लिया, और हमें लगा कि हमने दो चार सांसें निकाल ली, बड़ा फायदा हो गया हमें। तो सचिन तेंदुलकर फुटबॉल मैच प्लेयर को खेलते कूदते देखकर हमें 8 घंटे टीवी के सामने बिताने के बाद, अपने जीवन के 8 घंटे वेस्ट करने के बाद हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, आज की जनरेशन में बच्चों को खेलने से मना करा जाता है क्योंकि स्कूल की स्टडीज का बर्डन इतना, कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि उस बच्चे को टीवी भी देखना, टीवी तो खुद देखता है लेकिन फिर भी अगर कहीं मना किया जाता है तो इसलिए कि उस गोल को अचीव कर सके, इतनी हार्ड स्टडीज है, इतना भारी बैग है उसका कि उस वजह से वो व्यक्ति खेल कूद नहीं पाता, उसके शरीर की जो बनावट संरचना है वो डल हो जाती है, 20-22 साल में ही वो 45-55 साल का आनंद लेता है, कैसे, बीमारियों की वजह से, थकावट की वजह से इतना सुस्त रहता है, इतना लेजी रहता है कि वो 45-50 साल में जब व्यक्ति होता है तो थोड़ा थोड़ा फील करता है, तो वैसे वो भी से फील करता है जवानी में, नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, और फिर ज्यादा जाएंगे तो 60-65 के बाद जाएंगे तो क्रॉस नहीं कर पाता, वो 22-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतनी खतरनाक बीमारियां आ रही हैं, इतना ज्यादा मतलब नाम ही नहीं सुने आप लोगों ने ऐसी बीमारियों को, सब आ रही हैं, और हमको लग रहा है कि हम लोग एडवांस कर रहे हैं, अगर हम लोग एडवांस ही कर रहे हैं और अच्छी दिशा में कर रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर उठाइए, हमारी एडवांसमेंट का चित्र तो है ना, पढ़िए उसको सुबह से लेकर शाम तक, केवल बुराइयां, भ्रष्टाचार, उल्टे सीधे काम, यहां चोरी, यहां डाका, यहां पर ये, यहां पर वो। तो हमारा समाचार पत्र क्या है, हमारा शीशा है जो हम कर रहे हैं। तो अगर व्यक्ति सक्सेस चाहता है, वो आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है ये समझ आना चाहिए ना, भाग तो रहे हो आप सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन किस दिशा की तरफ भाग रहे ये मालूम है क्या, नहीं मालूम। इसलिए हम लोग भागते भागते इतने दुखी, इतने परेशान हो जाते हैं इस जीवन से कि कई बार लोग आत्महत्या करने का भी सोच लेते, इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इस समाज में रहते रहते उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उन सब चीजों को देखने करने के लिए हम लोग इतने हैरास फील करते हैं कि हम लोग कभी कुछ भी कर सकते हैं। अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन या सो कॉल्ड एडवांस टेक्नोलॉजीज हमें सुखी रखने के लिए थी, तो अमेरिका और जापान जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके पास, लेकिन वहां पर सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन ने जो दिया, सबसे ज्यादा अगर आप उनके स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा वहां पर डाइवोर्स केसेस हैं, क्योंकि कल्चर खत्म हो गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ने, मॉडर्न एडवांसमेंट ने कल्चर खत्म किया। सबसे पहले कल्चर खत्म होने से क्या हुआ, डाइवोर्स रेट बढ़ गया, क्योंकि वहां पर केवल सेंस एंजॉयमेंट दिमाग में रहता है, दैट्स ऑल, देयर इज नो रिलेशन एट ऑल। बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पिता के नाम की आवश्यकता नहीं है, इसके नाम की आवश्यकता है माँ के नाम, क्योंकि माँ तो पता चलता है बच्चे को कि मेरी माँ कौन है, बाप का फिर भी नहीं पता होगा। तो ये कल्चर। दूसरा, वहां पर जो बच्चे लोग ड्रग्स लेते हैं ये सबसे ज्यादा है, ड्रग्स एडिक्शन ज्यादा है। फिर वहां पर इलिसिट रिलेशन, टीनेज प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा है, 13, 14, 15 साल में बच्चे भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, एबॉर्शन हो रहे हैं, बच्चों को पेट में मार दिया जाता है। तो इस प्रकार ये हमको फायदा हुआ है सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन का। इससे पहले जब 20-30 साल पहले चले, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी इंडिया में, तो लोग ज्यादातर पैदल चल चल के जाते थे हर जगह, लेडीज जो है घर में सारे काम अपने हाथ से करते थे। आज हर घर में मेड है, और मेड एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, अरे आपके घर में मेड नहीं है, आप कैसे काम करते सारे। शादी के साथ व्यक्ति पहले बच्चों को सब कुछ सिखा के भेजते थे, घर में खाना कैसे बनाना है, कैसे नमक डालना है, मेरी सारी चीजें बना के भेजते थे। अभी वो जगह ले ली मेड नहीं, तो क्या हो रहा है इससे कि बच्चों को सीखना नहीं, सिखाने बच्चा, और फिर जिन परिवारों में गया वहां पर मेड कल्चर रहा, तो इसलिए खाना भी मेड बना रही है, बच्चे भी मेड पाल रही है, और हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये कल्चर खत्म हो गया, एक्टिविटीज खत्म हो गई, और फिर लोग दुखी और परेशान रहने लगे। तो यहां पर बताया जा रहा है, नॉलेज पहले जो नॉलेज हम लोगों ने लिया, उस नॉलेज का केवल अगर देखें तो जितने मच्छे हम तीर मार लें, जितनी मच्छी अच्छी एडवांसमेंट हम कर लें, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर भी दिया तो हो सकता है 20-50-500 लोग आपकी एक मूर्ति बना के सड़क में खड़ी कर देंगे किसी चौक पर, ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे। वैसे तो होता नहीं है, ऐसा कहीं हो नहीं रहा कि इतना बड़ा आदमी था उसका मूर्ति लगाई जाएगी, अभी होता नहीं है, बट फिर भी अगर कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा कौओं के लिए, चीलों के लिए, कबूतरों के लिए एक मल त्यागने का स्पेस बना दिया आप लोगों ने सड़क पर या कहीं पर भी, कि जहां पर वो चढ़कर वो रोज सुबह शाम क्या करें, अपना शिकार ढूंढे और मलमूत्र उसके ऊपर त्याग करें। उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता। आज महात्मा गांधी के ये हिस्ट्री बन गई है, महात्मा गांधी कोई था, ठीक है ना, जिस पार्टी का महात्मा गांधी है लोग उससे, उस पार्टी के लोग उससे इंस्पिरेशन नहीं ले रहे, तो सो पर एक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला है, दूसरा व्यक्ति कैसे इंस्पिरेशन लेगा उससे। तो ये तो हमारे रोल मॉडल है, ऐसे लोग जिनका कल्चर नहीं है, जिनका स्टेटस नहीं है, उन हीरोज को जो कि सबसे ज्यादा डिग्रेडेड है, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, जो सबसे ज्यादा इलिसिट रिलेशन रखते हैं, ऐसे हीरो हमारे फेवरेट हैं, उनके चित्र घर पे लगे हुए है कि नहीं। तो जब ऐसे लोग हमारे घर की शान बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम सोच सकते हैं ना हमारी चेतना का क्या स्तर है। क्या हमने सोचा क्या लाइफ के बारे में। भगवान यहां पर बड़े सुंदर बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज मैंने पहले दिया, दो तरह का नॉलेज, एक मटीरियल नॉलेज, एक स्पिरिचुअल नॉलेज। मटीरियल नॉलेज जिसके पीछे भाग रहे हैं, जो पढ़ने के बाद जो चाह रहे हैं, उसे कोई लड़के मेरी गोल है वो ये कि हम सक्सेस पाएं, दुनिया में कुछ कर दिखाएं, हमारा एक स्टेटस हो, ये सब सेकेंडरी चीजें, अल्टीमेटली पेट भरना उद्देश्य। व्यक्ति पढ़ता है इसलिए ताकि कल के फ्यूचर में वो भूखा ना मरे। तो ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये जो सारा सिस्टम है, ये केवल इसलिए है कि हम लोग पेट भरें। दूसरा, एक स्पिरिचुअल नॉलेज, ये वो ज्ञान है जिसे बोला जाता है जो हमारी आत्मा का असली फूड है, जिस ज्ञान को लेने के बाद जो पेरिशेबल नहीं है, जो खत्म नहीं हो जाता, शरीर के साथ खत्म नहीं होगा ये नॉलेज, क्योंकि ये जो नॉलेज है जो भगवान ने दिया है सोल के बारे में, सुपर सोल के बारे में, इस क्रिएशन के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, और इस जीवन को जीना कैसे है, हर समय व्यक्ति नॉलेज में रहकर किस प्रकार अपने को हमेशा इस संसार में आने वाले दुख तकलीफों से बचा सकता है, ये ज्ञान भगवत गीता में। और भगवान बोल रहे हैं कि इससे पहले जिन लोगों ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा वो मुक्त आत्माएं मेरे धाम को प्राप्त कर चुकी हैं। रेफरेंस दे रहे भगवान, कहते ना इसे गोली भी दे रहे, रेफरेंसेस दे रहे हैं पूर्व जन्म में जितने लोगों ने इस भक्ति के मार्ग को पालन किया, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में उतारा, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, वो मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब क्या है कि हम लोग दुखों से, तकलीफों से, या इस शरीर को बार बार जन्म बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में डालने से मुक्त हो जाएं। मुक्त का मतलब ये होता है जैसे किसी व्यक्ति ने वेट उठाया हुआ है और बड़ा परेशान है, दुखी है, तो उसके लिए मुक्ति क्या है, समय उस वेट के दुख से, तकलीफ से वो दूर हो जाए। अगर उसका वेट उठा के नीचे रख दिया जाता है तो वेट से मुक्त हो गया, अब वो ठीक है, खुश है, सुखी है। एक व्यक्ति इस संसार में अपने आप को इतना एंटेंगल कर लेता है इन 50 चीजों में कि वो उसके लिए क्या काम करते हैं, एक भार का काम करते हैं उसके दिमाग के ऊपर, इसलिए उसका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहता है। और इस प्रकार इन सब चीजों को करने से क्या होता है कि वो हमेशा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेस रहता है, और वो मुक्त नहीं हो पाता इन चीजों से। जैसे मैं कल भी एग्जाम्पल दे रहा था, अष्टावक्र नाम के बड़े अच्छे ऋषि हुए, उनका शरीर 8 जगहों से जो है मोड़ा टेढ़ा सा था, लेकिन वो बड़े ज्ञानवान थे। तो एक बार राजा ने उनसे कहा कि देखिए हम लोग तो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन ये माया ही हमें नहीं छोड़ती। जैसे कि हमारे पास भी यही जवाब होता है जब लोग कोई भक्त बोले कि माला करो, भगवान के लिए टाइम निकालो, अपने लिए समय निकालो, तो हम कहते हैं हम लोग इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, माया हमें छोड़ती नहीं। बात तो सही है, माया क्यों बोलते हैं इन सब चीजों को, क्योंकि जो चीज हमें भगवान से दूर करती है, जिसको भगवान के स्मरण में जो चीज बाधा है, भगवान का नाम सुनने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान का दर्शन करने में या भक्ति करने में जो चीज अवरोधक है उसे क्या बोलते हैं, माया। तो उन्होंने कहा एक मिनट, उन्होंने एग्जाम्पल कैसे दिया, वो उठे भागे और एक खंभे पे चिपक गए जाकर, कहते बचाओ बचाओ मुझे छुड़ाओ। सब लोग कैसे क्या कर रहे हो, छुड़ाए कैसे, पकड़ दो आपने वो खंभे। कहते मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि हम लोगों ने माया को पकड़ा हुआ, माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ, हम लोगों ने अपनी टांगें घुसा रखी है इधर 50 जगहों पर। अगर आप नाम घुसा हो तो आप फ्री हो, यू आर मुक्त, यू आर डिलीवर्ड। अगर हम लोग टांगें ना फंसाएं ज्यादा जगह तो डिलीवर्ड आप मुक्त हो गए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक सोच रहे हो ये करूं फिर ऐसा करूं, ये करूं फिर इतना पैसा, फिर ऐसा कर लूं, फिर इधर लगाऊं फिर उधर लगाऊं, 50 जगह पर टांगे हमने फंसाई हुई ना। आज माने में डिलीवरी आए, देवी है क्योंकि जब करते हैं इसलिए वो फील कर पा रहे हैं इस चीज को। कह रहे हैं प्रभु जी आजकल मैं भगवान के नाम को जप करने में बड़ा स्ट्रगल फील कर रहा हूं, बिजनेस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो कई बार तो दिल करता सबको छोड़ू और मंदिर आ गया। मैंने कहा ये भी सोल्यूशन ठीक नहीं है, है ना, 50 लोग कहने देखो, क्योंकि बाहर सक्सेस का मतलब तो यही है ना कि इसका बिजनेस बढ़ गया उसका मतलब सक्सेस हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है इसका मतलब सक्सेस मिल रही है उसको। जबकि सक्सेस का मतलब क्या है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्टमेंट करें, हमारी चेतना एनिमल कॉन्शियसनेस से उठकर थोड़ी हायर कॉन्शियसनेस में जाए। एनिमल कॉन्शियसनेस क्या है, एक जानवर की चेतना कैसी होती है, क्या करता है वो सुबह शाम केवल किस बारे में सोचता है, खाना, भोजन कहां मिलेगा। भोजन बढ़िया मिलने के बाद वो क्या कौन सा स्थान ढूंढता है, जहां पर बढ़िया तान के सोए, उसके बाद वो बैठक में करता है और उसके बाद अपनी सुरक्षा करने के लिए वो जगह ढूंढता है जहां पर वो सुरक्षित रहे। तो इसको बोलते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस, खाना, सोना, मैथुन करना और सुरक्षा करना, जिस व्यक्ति की चेतना इसमें लगी हुई है ये एनिमल कॉन्शियसनेस है। सुपर ह्यूमन बींग जो पढ़ाई कर रहा है या जिस पढ़ लिया है या जो बिजनेस कर रहा है, अल्टीमेटली गोल क्या है उसका, इन्हीं चार चीजों को ठीक ढंग से करने का। तो क्योंकि पूरा का पूरा समाज सक्सेस मानता ही इसको है कि जिस व्यक्ति ने अपना परिवार को अच्छे से पाल लिया, अच्छा खा लिया, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो वो व्यक्ति सक्सेस है, सक्सेसफुल व्यक्ति। हम सब के दिमाग में यही है। जबकि शास्त्र कह रहे हैं अगर हम लोगों ने इस प्रकार के सो कॉल्ड कंफर्ट्स इकट्ठे कर भी लिए, इन सब चीजों को अपने पास रख भी लिया, समान 10-20-50 लोग हमारी हमको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये व्यक्ति कुछ है, ऐसा करने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे हमारी जो मेंटेलिटी है वो किसके समान है? पशु समान। क्योंकि हम लोग ज्यादा धन कमाकर या ज्यादा ऑपुलेंस इकट्ठा कर हम एक अच्छा पशु बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिसके पास भी अधिक धन है और वो धन को यूटिलाइज करना चाहता है उसको कहीं पर, वो कहां पे करेगा, किन जगहों पे करेगा? जो कंफर्ट्स है, सोफास है, बढ़िया टीवी, ये सब खरीद लिया, देन व्हाट नेक्स्ट? जो बड़े बड़े टीवी खरीद लिए, बड़े बड़े मूवीज उसने देख ली, उसके बाद जो उसकी जो डिजायर बन रही है, अब वो पैसा वहां लगाएगा। और ज्यादातर पैसा लगाया जाता है किन जगहों पर? हाँ, वो जुआ खेलने जाएगा, है ना? पैसा है तो कुछ ना कहीं तो करना है ना, खत्म क्या करेगा उसका? वो तो जुआ खेलने जाएगा, कैसीनोस जाएगा, फिर वो गलत जगहों पर जाएगा, ऐसी जगहों पर जहां जहां उसका मन करता है, जो चीज देखने का करने का वो घर पर नहीं कर सकता, तो ऐसी जगहों पर जाकर पैसे का इस्तेमाल करेगा जहां पर वो फ्रीली इस पैसे को खर्च कर उन सब चीजों को कर सके, जिसको बोलते हैं इलिसिट कमीशन। तीसरा, रोटी वगैरह रोजी खाते हैं, कुछ स्पेशल खाए, तो कुछ स्पेशल में क्या खाएगा फिर? वो नॉनवेज की तरफ बढ़ेगा। पैसा है, एक गरीब आदमी आज मीट बढ़ता जा रहा है, महंगा होता है, एक गरीब आदमी कहे छोड़ मैं क्यों खाऊं, मैं दाल रोटी खाऊं, अपना पेट भरूं, लेकिन जो पैसा है उसके पास तो क्या करेगा, वो इस जगह पर इस्तेमाल करेगा। चौथा, अपनी सुरक्षा के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जैसे आज मॉर्निंग में बता दिया, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस ना, वैसे लाइफ इंश्योरेंस नहीं, डेथ इंश्योरेंस है कि तुम्हें मरना मरना है और कुछ इंश्योरेंस करा लो दूसरों के लिए, इस श्योर कि आप मरेंगे, तो जिसको कहते हैं डेथ इंश्योरेंस। अगर आपने भक्ति कर ली, अगर हम लोग भगवान के कहने के अनुसार चल पड़े, जैसे बता रहे कि मुक्त आत्मा है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब कि देयर इज नो डेथ एट ऑल। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, या भगवान में अपनी चेतना को लगाता है, तो इस जगत में, इस संसार में, इस शरीर में, इसका जब देह का त्याग करता है या जब इस मटीरियल वर्ल्ड को त्यागता है, तो उसको फिर एटर्नल अबॉड, भगवान का जो शाश्वत धाम है, शाश्वत का मतलब एटर्नल, सनातन, जो कभी खराब खत्म नहीं होता, उस धाम में हमारी एंट्री होती है। और इस धाम में इस मटेरियल वर्ल्ड का नाश बार बार, प्रलय बार बार, डिसोल्यूशन बार बार होता रहता है, एनिहिलेशन बार बार होता रहता है, हमें दिखता नहीं है, लंबे समय बाद होता है, लेकिन होता है। जैसे 5,000 साल पहले जब द्वारका में भगवान थे, अपने धाम चले गए, लेकिन आज उसी द्वारका समुद्र के अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स मिल रहे हैं, साइंटिस्ट लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो क्या कहते हैं उनको, जो पानी में जो बड़े बड़े बोल्डर्स मिल रहे हैं, वो सारे देख रहे हैं समय पहले बना था, सब सारी चीजें मिल रही, वो सारे चार चिन्ह है, वृंदावन है, यमुना नदी है, ब्रज रज है, गोवर्धन है, वो सारी चीजें अवेलेबल है, सब दिख रही है हमें, लेकिन जब एक युग से दूसरे युग बदलते हैं, सारी चीज समाप्त हो जाती है। तो गोस्वामी आए जिन्होंने इन सब चीजों को दोबारा से स्थापित किया, राधा गुण कहाँ है, श्याम गुण कहाँ है, कहाँ भगवान ने लीला कर दी, कौन सी वो 56 कटोरी जगह जहाँ भगवान जब गौ को चराने जाते थे तो पहाड़ में कुछ ऐसे होल बना लेते थे जिसमें अपना खाना डालते थे, मिलकर खाते थे, तो वो पहाड़ का भी चिन्ह है, भगवान के चरणों का निशान है। तो इन सब चीजों को देखकर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी जब, लेकिन जो युग बदलता है तब ये सारी प्रलय जब होती है तो सारी चीजें तुम्हें खत्म हो जाती है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जब बात कर रहे हैं, यहां पर जो ज्ञान की बात हो रही है, इसका मतलब ये कि जब तक हम लोग नॉलेज में नहीं रहेंगे, ज्ञान में नहीं रहेंगे कि मटीरियल वर्ल्ड और मटीरियल नॉलेज का क्या बेनिफिट है या क्या इसका एम है, स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या एम है, हम लोग मटीरियल है या स्पिरिचुअल है? हाँ जी, अभी मटीरियल स्पिरिचुअल हम क्या है?
कुछ लोग कह रहे हैं मटीरियल, कुछ लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअल. बात एक्चुअली हम लोग वे आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. एक्चुअली मटीरियल हमारा बॉडी है फाइव एलिमेंट्स का. सटल बॉडी जो मन बुद्धि अहंकार है वो भी मटीरियल है, मैटर है, नो लाइफ. सोल जो है वो स्पिरिचुअल है. तो हम लोग इन तीन शरीरों की कॉम्बिनेशन है, सोल, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी. आत्मा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर. तो यहां यूं बोले दो शरीर है, एक आत्मा और एक शरीर, ठीक है, ग्रॉस. ये संसार बना है इस शरीर को कंफर्ट करने के लिए, इसके लिए जॉब करने के लिए, इसको पेट भरने के लिए. बट जो आत्मा है उसको तब तक सुख या शांति या सुख आनंद नहीं मिलेगा जब तक वो स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक या भगवान से नहीं जुड़ेगा. हम लोग शरीर से भी इस संसार से जुड़े हैं, इसको कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो आत्मा शरीर के अंदर है उसकी खुराक असली केवल स्पिरिचुअल आध्यात्मिक. उसको जब तक खुराक नहीं देंगे, जब तक उसके लिए नहीं सोचेंगे, तब तक हमको संसार में दुख रहना पड़ेगा. तो जो ज्ञान है उसका मतलब ही ये है कि जो हमको प्रकाश दे, प्रकाश की ओर लेके जाए. इस कमरे में ज्ञान है अर्थात नॉलेज है अर्थात प्रकाश है. तो हम देख सकते हैं कहाँ खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कहां से निकलना है. हम नॉलेज में है. अंधकार का मतलब इग्नोरेंस, जहां पर हम कुछ देख नहीं सकते. लाइट ऑफ करते हैं अभी यहां पर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, चलेंगे तो एक दूसरे को गिरेंगे. तो जो ये संसार में जो नॉलेज है, इस नॉलेज का केवल अल्टीमेट एक गोल है क्या, कि हम लोगों को दो वक्त की रोटी मिले, अपनी लाइफ को जिए, और उस नॉलेज के बेसिस पर हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का प्रयास करें. स्पिरिचुअल नॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट कि जैसे ही हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ चलते हैं, भगवद गीता इत्यादि पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमको अपने सेल्फ के बारे में, आत्मा की क्वालिटीज के बारे में मालूम पड़ता है. उस लाइफ को जीना कैसे है इसके बारे में मालूम पड़ता है. जो दुख, समस्याएं, तकलीफें हमें रोज आ रही हैं, इस इन सबके आते हुए भी हमको अपना माइंड स्टेट कैसे रखना है, क्या सोचना है. उस समय भगवान कह रहे हैं हम लोगों को इन सारी समस्याओं से ऊपर उठना चाहिए. अब ऊपर कैसे उठें, अगर आप सुखी होना चाहते हो तो आज बड़े सारे जो हैं लोग बैठे हैं समाज में जो काउंसलिंग करते हैं, जो लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो प्रयास करते हैं ये मटेरियल एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपको सॉल्यूशन देंगे. उसको बोलते हैं पैचअप सॉल्यूशन. आपको बहुत समस्या आ गई, कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो आप किसी काउंसलर के पास, किसी व्यक्ति के पास गए, आपने कहा मुझे गाइड करो मेरी ये समस्या है, तो क्या करेगा, कुछ मटेरियल बेनिफिट देगा आपको, मटेरियल सोल्यूशन देगा कि आप ऐसा कर लो, ऐसे एकदम ऐसा कर लो, आपको गुस्सा ज्यादा था, मुंह धो लो, ज्यादा तालियां बजा लो, है ना, ऐसे ऐसे सोल्यूशन देगा. जबकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. ताली बजाने से, मुंह धोने से ऐसे नहीं गुस्सा हमेशा खत्म हो गया. लेकिन जो स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं वो हमें परमानेंट सोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि आज आप मेरे पास आ गए. अगर टेम्परेरी सोल्यूशन की बात करते हो तो आज मेरे पास आए हो, मेरा सोल्यूशन ठीक नहीं हुआ तो आप दूसरे सोल्यूशन के पास जा रहे हो, तीसरा शुरू कर रहे हो. लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि हम लोग ये जान जाए एक बारी, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने जीवन को जिए. परपट में देखिए क्या करें भगवान, क्योंकि भगवान ने एक रेफरेंस दिया मुक्त आत्माओं के बारे में. तो मुक्त आत्माओं का मतलब क्या, वन हु इज इन नॉलेज, जो ज्ञान में है वो कभी दुखी नहीं होता. जिसको मालूम है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और ये शरीर से आत्मा एकदम निकल जाएगा, और शरीर से जो मैं एफर्ट कर रहा हूं, उस कर्म को जिसको मैं कर रहा हूं, उस कर्म को किस कला से करूं, जैसे यहां पर रेफरेंस दे भगवान कि प्रकृति को जान करके ही कर्म किया. उन्होंने कर्म तब किया जब ये नॉलेज में थे. नॉलेज में कर्म करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग किसी भी कर्म के रिएक्शन से बंधते नहीं है, क्योंकि कर्म करने के बाद उसका रिएक्शन है, उसका एक फल है. किसी भी प्रकार के कर्म करने उसका एक फल है, और उस फल को जब हमने ही भोगा या हम चाहते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, तो कर्म बांधता है. लेकिन जब मुक्त आत्माएं हैं जिन्होंने को ज्ञान था, उन लोगों ने क्या किया, विद नॉलेज सारे कर्म किए कि मुझे करना क्या चाहिए, कौन सा कर्म मेरे बेनिफिट के लिए है, कौन सा कर्म मेरे शरीर के बेनिफिट के लिए है, कौन सा मेरी आत्मा के बेनिफिट के लिए है, किस प्रकार के कर्म करते समय मैं अटैच हो जाता हूं, और किस प्रकार मुझे करना चाहिए जिससे मैं डिटैच रहूं कर्मों से. तो प्रभा जी यह बता रहे हैं कि मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, और कुछ के और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं. मुक्त का एक अलग से डेफिनेशन है. کچھ لوگوں کا من ہمیشہ اس مٹیریل ورلڈ کے تھاٹس میں لگا ہوا ہے, وہ جو چار چیزیں بتائیں, ایٹنگ, میٹنگ, ڈیفینڈنگ, سلیپنگ, ہمیشہ من جو ہے دوشت وچاروں سے بھرا ہوا ہے. اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ کچھ کے بھوتک درشٹی سے سوتے ملتے ہیں, جو ان فائیو ایلیمنٹس اس مٹیریل ورلڈ, بزنس یا جو جتنی بھی چیزیں, ان سب سے ان کا من وچلت نہیں ہے, وہ ڈیٹیچڈ ہیں. ایسے لوگ مکت ہیں, وہ سوتنتر ہیں جیون سے, تو انہیں مکت کہہ سکتے. کرشن بھاونا میں ان دونوں شریوں کی ویکتیوں کے لیے سمان روپ سے لابھ پرد ہے. جن کے منوں میں دوشت وچار بھرے ہیں انہیں چاہیے کہ بھکتی کے انوشٹھانوں کا پالن کرتے ہوئے کرم کے شدھیکرن کے لیے کرشن بھاونا کو گرہن کریں. شریمد بھاگوت میں ایک شلوک آیا ہے جس میں کہا گیا ہے, ستام پرسنگا مم ویر سمبھو, کہ سب سے پہلے ویکتی کو چاہیے اگر وہ شدھ ہونا چاہتا ہے, پوتر ہونا چاہتا ہے, من کے سارے وچاروں کو ختم کرنا چاہتا ہے, یہ بھکتی میں ایڈوانس کرنا چاہتا ہے, سب سے پہلے وہ ستام ارتھات بھکتوں کا سنگ کرے, شدھ بھکتوں کا, بھگوان کے ستوں کا سنگ کرے. سنگ مطلب ایسوسیٹ کرے ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ایسوسیشن سے کیا بینیفٹ ہوگا, کیونکہ بھکت لوگ کرکٹ میچ کی بات نہیں کریں گے, بھکت لوگ سینسیکس کی بات نہیں کریں گے, بھکت لوگ مٹیریل ٹاک نہیں کریں گے. کس بارے میں بات کریں گے, وہ بھگوان کے بارے میں بات کریں گے, جیون کے ادیشیہ کے بارے میں بات کریں گے, وہ یہ بتائیں گے کہ اس لائف میں جینا کیسے ہے. تو اس لیے جب کوئی مٹیریلسٹک آدمی بھگوان کے بھکتوں کے بیچ میں آتا ہے تو پھر ان کے بیچ میں رہ کر اسے گیان ہوتا ہے کہ مجھے جینا کیسے ہے. جب وہ بھگوان کے وشے میں سنتا ہے, بھگوان کتھائیں سنتا ہے, بھگوان کی گلوری سنتا ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہے بھگوان ہماری لائف میں, کیا کر سکتے ہیں بھگوان ہمارے بارے میں, تو دھیرے 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 اس کا پھر مٹیریل ورلڈ سے اٹیچمنٹ جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے, ڈیٹیچ ہونا شروع ہوتا ہے, اور کن سے اٹریکٹ ہوتا ہے, وہ بھگوان سے. اس لیے بولا ستام پرسنگا مم ویر سمجھ, کیا کرتے بھگوان کے میرے بارے میں چرچا کرتے ہیں. کوئی بھی بھگت لوگ دیکھیے, ہم لوگ مٹیریلسٹک لوگوں کے بارے میں چرچا کرتے تو ہمیں باندھتا ہے, لیکن بھگوان کے بارے میں چرچا کرنے سے, یا جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں فلاسفی ڈسکس کر رہے ہیں, بھگوان کے وشے میں ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہاں پر ہمارے من اس سمے کہیں جا رہے ہیں, کوئی غلط وچار آ رہا بیٹھے ہوئے, یہی گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم پب میں لگا دیں, ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں, یا مٹیریلسٹک لوگوں کے ساتھ کھڑے کے بات کریں, تو ایک گھنٹے میں اتنا سارا کنٹامنیشن, امپیورٹیز ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں, ان تھاٹس کے اکارڈنگلی پھر ہم گھر میں جا کے سوچتے ہیں. اس پرکار ہماری چیتنا, ہماری کانشیس پلیوٹ ہو جاتی ہے. جیسا کرو گے سنگ ویسا ہوگا من. تو من جن کے گندے ہیں ان لوگوں کو چاہیے بھکتوں کے ساتھ ایسوسیشن بڑھائے. اور پھر بتا رہے کرمک شدھیکرن ہوتا ہے, اسی شلوک میں آگے بتایا گیا ہے, شردھا رتی بھکتی کرمک وکاس ہوتا ہے ویکتی کا, کہ اس کے اندر شردھا ڈیولپ ہوتی ہے کسی کے بھی بارے میں سننے سے. جیسے آپ کو کسی نے ویکتی نے بتایا یار بلیک بیری کا جو موبائل ہے اس کے اندر آج کل ڈکشنری بھی آ گئی ہے, اس کے اندر آج کل مطلب کیمرہ بھی ہے, اس کے اندر انٹرنیٹ بھی ہے, اس کے اندر اب یہ بھی کر سکتے ہو, پچاسوں چیزیں بتا دی. آپ نے اتنی دیر ایک موبائل کے بارے میں سننے کے بعد اس موبائل کے پرتی تھوڑی سی روچی اتنی ہو گئی آپ کو, نہیں موبائل تو بڑا اچھا ہے. بار بار سننے سے اس کی کوالٹیز کو سمجھنے کے بعد کیا ہوا, من میں وچار آیا کہ اگر میرے پاس بھی ہو تو میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی, یہ ضرورت پوری ہو جائے گی, یہ ضرورت پوری ہو جائے گی. تو دھیرے دھیرے ہمارا من اس موبائل سے اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے, پھر ہم اس کو فلفل کرتے ہیں. تو اس پرکار ہمارا من بھوتک وچاروں سے بھرا رہتا ہے, لیکن جب ہم لوگ بھگوان کے وشے میں سنتے ہیں, کیونکہ اس موبائل کے پرتی شردھا اتپن ہوگی نا, تو موبائل کانشیس ہو گئے. جب کرشن کے بارے میں سنیں گے, کرشن کا سندر روپ دیکھیں گے, تو کیا کرشن کانشیس ہوں گے, شردھا ڈیولپ ہوگی, تو وہ نشٹھا کے روپ میں آ جائے گی, پھر رچی ہو جائے گی, اٹیچمنٹ ہو جائے گا بھگوان سے, اینڈ دین پریم ڈیولپ ہو جائے گا بھگوان سے. اس لیے جب دیکھو کہ موبائل نمبر نیا لیتا ہے, ہاتھ صاف کرتا رہتا ہے, بار بار دیکھتا رہتا ہے, بار بار اسکرین دیکھتا ہے, بار بار دیکھتا ہے, کچھ ہوا تو نہیں, بڑا کانشیس ہوتا ہے موبائل کانشیس, کہیں گھوم تو نہیں گیا, کہیں گھیر میں جائے گا پکڑ کے جائے گا, نہیں 25,000 کا, 20,000 کا, 15,000 کا, تو اتنا کانشیس موبائل کانشیس رہتا ہے. لیکن اگر وہ 1100 کا موبائل لے لگا رہے ہو تو سوچ رہے تو بس اس بارے میں, ہاں نہ تو کرنا فون پہ کیا کرنا ہے. تو کہنے کا مطلب اگر ضرورت ہے تو لے سکتا ہے, اچھا موبائل لے سکتا ہے, کوئی دقت نہیں ہے, لیکن اسے یوٹیلائزیشن ڈھنگ سے ہونا چاہیے. تو بھگوان کے پرتی شردھا ڈیولپ کرنی چاہیے, وہ ہوگی کب, جو بھگوان کے بیچ میں آئیں گے. پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ شدھیکرن کے لیے اس طرح کارمک کرمک شدھیکرن کے لیے کرشن بھاونا کی شرن گرہن کرتا ہے, और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावना रूप में अग्रसर होते रहते हैं। दो तरह के लोग, एक गलत माइंड वाले और ये ऑलरेडी डेवलप जिनका शुद्ध हो चुका है, तो वो तो इसमें आनंद लेते रहते हैं, लेकिन जिनका साफ नहीं है मन अभी, उनको चाहिए कि अपने अटैचमेंट इधर बढ़ाए। फिर जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्य को अनुसरण कर सके। देखिए, जब लोग भगवान की भक्ति करते हैं ज्यादातर लोग कैसे आते हैं मंदिर, जब वो देखते हैं कि अरे आजकल हमारे पड़ोस में से ये व्यक्ति इस्कॉन जा रहा है, नहीं वो सुबह शाम जाता है, और उसका अगर आचरण भक्ति सीखने के बाद समझने के बाद अच्छा आचरण भी है, खुश भी रहता है, तो लोग चाहेंगे कि हमें भी जाना शुरू करो। तो जब एक व्यक्ति भक्त है, भगवान का नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो क्या होता है, लोग उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग मंदिर आज आए हो तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको घर से आकर बुलाया, कईयों का रीजन होगा कि किसी ने कोई बुक पढ़ी होगी, फिलॉसफी अच्छी लगी तो आ गए, किसी ने किसी भक्त को देखा होगा ये रोज इस बन जाते तो हम भी चले, किसी ने देखा होगा कि यहाँ से कीर्तन निकल रहा है एड्रेस आ गया चलो मैं चलो, तो किस प्रकार आता है, दूसरे लोगों को देखकर आता है कि अरे ये हमारे यहाँ रहता था, ये तो बहुत बड़ा मीट ईटर था, बहुत ज्यादा मांस खाता था, ये करता था ये गलत भी काम करता था, आजकल तो बड़ी माला टांगी घूम रहा गले, अरे इतना ही नहीं मैं धोती कुर्ता में गया, इतना बड़ा चेंज क्या हो गया, तो लोगों को लगता है सच में कुछ है, तो फिर उसके जीवन के बड़े बदलाव को देखकर दूसरे भक्त भी आना शुरू कर देते। तो बता रहे गुरुबाज जी की एक आदर्श अनुसरण करता है फिर उसको लोग फॉलो करते हैं। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से वृद्ध होना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट आगे कि कई बार जो नए नए लोग जुड़ते हैं तो वो कहते हैं अरे अच्छा भगवान यहाँ बड़ा अच्छा शांति रहती है, सुख रहता है, मैं संसार छोड़े दूं तो ज्यादा अच्छा। तो बाबा गुरुबाज जी कह रहे हैं मूर्ख रूप बोल रहे हैं उसको और बोल रहे हैं नव दीक्षित, मतलब नियोफाइट अभी नया नया आया है, तो एकदम उसके अंदर वैराग्य जाग जाता है। आपने देखे होंगे कई आपके आस पड़ोस में कई बार लोग घर के दुखों को छोड़कर दुखों की समस्याओं से वाइफ से बच्चों से परेशान होकर वो क्या करते हैं संन्यास ले लेते हैं, रोज रोज की टेंशन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो कई बार लेते हैं और पर्वतों पर चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं या हरिद्वार चले जाते हैं, जब देखते सारे साधु यहाँ पर भीड़ फूक रहे हैं, सारे के सारे पेरे छुप छुप के यहाँ पर भी लड़ाई कलेश हो रहे हैं, यहाँ पर भी मेरी सोने वाली जगह में दूसरा व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो कहता है इससे पहले घर ही ठीक था वापस चलते। तो उसका जो वैराग्य है वो फल्गु वैराग्य है, थोड़ी देर के लिए फल्गु इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक नदी है फल्गु नाम की, उस नदी को देखते हैं तो वो जमीन लगती है ना, लेकिन जैसे घुसते तो पानी होता है उसके अंदर, तो फल्गु वैराग्य ऐसा कुछ है। और इस प्रकार साधु बना देंगे इस्कॉन नहीं जाना पाए, इतने नियम है यहाँ पर हम तो नहीं कर सकते। नहीं क्यों नहीं हो, नियम केवल मनुष्यों के लिए होते हैं। आपने देखे कुत्ता सड़क से भाग रहा हो, रेड लाइट क्रॉस कर दिया, पुलिस वाला गाड़ी लेके उसके पीछे भाग रहा हो, देखा, क्योंकि रूल्स जानवरों के लिए नहीं है, समझदार लोगों के लिए, और रूल्स जो हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए। अगर रेड लाइट हम लोग सड़क से हटा दें तो अब मंदिर पहुंच भी ना पाओ, जाम ही लगा रहेगा, एक दूसरे गालियां देते रहेंगे लोग, सड़कों पर खड़े रहेंगे, और अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा भी अपनी गाड़ी निकालने के लिए निकलेगा, जब तक उसकी गाड़ी प्रॉब्लम है तब तक खड़ा है, उसके बाद निकल जाएगा वो। तो कहने का क्या मतलब है, ये रूल्स रेगुलेशन हमारे बेनिफिट के लिए, तो समझदार लोगों के लिए रूल है। तो यहाँ पर जो रूल्स में बताए जा रहे हैं वो इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आज मॉर्निंग में बड़े सुंदर एक बात बताई थी, जो लोग नियमों को तोड़ते हैं या जो शास्त्र के विपरीत जीते हैं ये अवश्य ग्रामीण अर्थात ये नरकों की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से जीना शुरू करता है, और जो व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं, अगर आप वैसे देखो सिंपल सा, कोई व्यक्ति चाहता है मैं अपनी लड़की की शादी कराऊं, या कोई चाहता मैं अपनी बहन की शादी कराऊं, तो कैसा लड़का ढूंढता है? अगर कोई उसको मालूम पड़े कि भाई ये लड़का है, अब तो पता नहीं कितना लोग अप्रिशिएट करोगे मुझे मालूम नहीं, बट पहले तो कुछ समय पहले ऐसा था, अगर कोई लड़का मीट नहीं खाता था तो लड़का तो बड़ा अच्छा आदमी था, और अगर पीता भी नहीं था तो बिल्कुल परफेक्ट आदमी, ना सिगरेट पीता है ना शराब पीता है, मैं तो अपनी लड़की किसी से शादी कराऊंगा या अपनी बहन किसी से शादी कराऊंगा। अच्छा, आपको इधर उधर रिलेशन भी नहीं है, नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड का चक्कर कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ तो ये मतलब एक परफेक्ट आदमी है। और जुआ वगैरह भी नहीं खेलता, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। तो कितने लोग चाहेंगे ऐसे किसी शादी करना है या अपनी बेटी की करवाना है या बहन की करवाना है, कितने लोग चाहेंगे? ठीक है, सब चाहेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि आप घर में प्रवृत्ति है, लेकिन आजकल समाज में अगर कोई पीता नहीं है और खाता नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, बेकार का आदमी है, जीवन ही खराब है इसका तो। नहीं, क्या इसने देखा, क्या खाया पिया, अरे तो सोसाइटी में बैठने लायक ही नहीं, वो जानवरों की सोसाइटी में बैठने के लायक नहीं, बताइए। तो देखिए कितनी अजीब बात है, आज धीरे धीरे भारत जैसे देश में जो कि संस्कृति का देश है, उस देश में शहरों में कम से कम लोग ऐसे हो चुके हैं कि जो पीने को खाने को और खासकर अब इलिसिट रिलेशन को बुरा नहीं मानते, अर्थात एनिमल मेंटालिटी। शेर के लिए कोई मंगलवार सोमवार नहीं होता, कोई 16 सोमवार का अर्थ नहीं होता, सोमवार शेर उसने सब कुछ खाना है, कुछ 40 है नहीं पड़ेगा उसने तो सारा नहीं खाता है ना। और जानवरों के लिए कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर लेते। तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसे बोलते हैं एनिमल सिविलाइजेशन, क्योंकि व्यक्ति पूरी मेहनत कर रहा है सुबह से शाम तक एनिमल बनने के, एक अच्छा जानवर बनने के लिए। तो ये जो क्वालिटीज हैं, जो नियम बताए जाते हैं, वो इसलिए बताए जाते हैं सुबह व्यक्ति बुरे कामों में लिप्त ना रहकर अपने को बचाए और अच्छे कार्य में लग सके। कोई कह सकता है मैं तो बड़ा, मेरे साथ तो अभी भी है, मैं अभी भी कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसा है, क्या कर सकते हैं, स्कूल समाज आसपास का ऐसा है। अगर कोई नियम तोड़ भी रहा है और अगर कहीं हमारी कुछ आदतें गंदी बनी भी हुई हैं तो हमें प्रयास तो करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना तो करनी चाहिए कि मैं शुद्ध हूं। तो बेस्ट प्रार्थना क्या है कि हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मोमेंट में इस इस्कॉन सोसाइटी से जुड़ने वाले आप लोगों को देखोगे, कोई मांसाहार नहीं करता, नशा नहीं करता, अवैध संबंध नहीं रखता, कोई जुआ नहीं खेलता। ऐसा नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं इन नियमों का पालन वो पहले से नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे मीट ईटर थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे ड्रंकर थे, सारे के सारे उल्टे सीधे काम करने वाले थे पहले, लेकिन भगवान की यहाँ पर इतनी कृपा है, रूपाल जी के बनाए द्वारा बनाए गए मूवमेंट में इतने रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रांग है, इतनी प्योरिटी है यहाँ पर, कि जैसे व्यक्ति आता है कथा सुनता है दर्शन करता है कीर्तन सुनता है तो भगवान के नामों को सुनने मात्र से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, प्रसाद खाता है खिचड़ी खाता है तो उसके और पाप समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, सुनने के बाद और हरिनाम लेने के बाद धीरे 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 हरिनाम भी ले रहा है उल्टे सीधे काम भी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो चित्त है उसका जो मन है जिसके अंदर से डिजायर होती है हमें ये करो आज मैं ये करूं वो प्योरीफाई हो जाती है, उसके थॉट्स प्योरीफाई हो जाते हैं। प्रसाद खाने से आत्मशुद्धि सत्यशुद्ध सत्यशुद्ध ध्रुव स्मृति, अर्थात प्रसाद को खाने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हमारे जो ब्रेन टिश्यूज है वो प्योरीफाई हो जाते हैं। इस देश में इसलिए प्रसाद की इतनी महिमा है, जैसे ही हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं हमारे ब्रेन टिश्यूज प्योरीफाई होते हैं, और ब्रेन टिश्यूज प्योरीफाई होने से क्या होता है, हमारे को मोक्ष क्या है, जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के कष्टों से बाहर कैसे निकलना है, मुक्ति कैसे मिलेगी, विप्र मोक्ष, अर्थात हमारी बुद्धि इतनी इंटेलिजेंटली हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमें यहां से बाहर निकलना है, इस संसार में रहने का कोई फायदा नहीं, तो हमारी मुक्ति की ओर हमारे मार्ग द्वार खुल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है पूर्वाजी बता रहे हैं, लोग एकदम इमीडिएटली सबको छोड़ना चाहते हैं, फिर करे किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। अर्जुन ने भी कहा कि भगवान आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दे दिया, सोल परमात्मा सब कुछ बता दिया, अब ये सब बेकार ही है, तो व्हाई शुड आई फाइट, मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, आपको कर्म तो करना है, अपने घर में हाउस वाइफ को कर्म करना है, हाउस वाइफ का धर्म है पति की सेवा करे, बच्चों को पाले, कर्म करना है, पति का काम है अपनी पूरी फैमिली को पाले, कर्म करना है, लेकिन किस प्रकार करना है, बिना अटैच हुए। माया अर्पित मनोबुद्धि, अपनी बुद्धि को और अपने मन को मुझे अर्पित कर दो, कृष्ण कह रहे हैं, और अर्पित करने के बाद अपने सारे काम एज ए ड्यूटी करते रहो लोग काम, उससे क्या होगा, उसका रिएक्शन नहीं है, और अगर रिएक्शन नहीं है तो नेक्स्ट लाइफ नहीं है। फिर यहां कह रहे हैं अर्जुन को भी उसने बोला था लेकिन अर्जुन को मना कर दिया गया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। अभी हम ये तो सुन लिया कि हाँ अपने कर्म करो, लेकिन किस प्रकार करने हैं कर्म को ये समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो भी कर्म करते हैं या जो भी क्रिया करते हैं, श्री श्री राधा राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, हमें कर्म कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा। कर्म इसका मतलब नहीं कि सुबह दुकान में जाओ, दुकान खोलो, शाम को आ जाओ, पैसे जो मिले वाइफ के हाथ, माँ के हाथ दे दो, ये सब करो, है ना, अपने परिवार को पालो, पैसे ऐसे लगाओ, इधर इन्वेस्टमेंट करो, ये सारे क्रियाएं हैं, कर्म है, लेकिन इस प्रकार कर्म करना चाहिए, इंटेलिजेंटली कर्म करना चाहिए, इन सब कर्मों को करते हुए भी हमसे अटैच ना हो, क्योंकि अगर हम लोग कर्म कर रहे हैं तो कर्म से हमें बांध देता है उसके फ्रूट से, क्योंकि हमारे सब क्रियाओं के पीछे हमारा उसके रिजल्ट से हम लोग अटैच होते हैं कि मैं ये कर रहा हूं उससे मुझे ये मिले, मैं ये करूं तो मुझसे ये मिले, तो जितने भी कर्मों को हम कर रहे हैं उनसे अटैच होकर वो हमें दुख देते हैं, वो हमारे को परेशान करते हैं। तो यहां भगवान दुर्गा जी कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए कर्म कैसे करना है। और फिर यहां पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना में कर्म करें। भगवान ने बड़े बड़े राज ऋषियों को राजाओं को भी ज्ञान दिया, लेकिन उन राजाओं ने राज्य चलाए बड़े बड़े, लेकिन राज्य से कभी अटैच नहीं थे, जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, उनको भगवान ने सब कुछ दे रहे, कि जैसे ही उनको पता चला भगवान अब वापस अपने धाम को चले गए हैं, तो उन्होंने अपने राजपाट को ऐसे त्यागा जैसे हम लोग रोज मॉर्निंग में मल त्यागने जाते हैं, देखते भी नहीं दुआ। तो युधिष्ठिर और सारे भाइयों ने अपने सारे बिजनेस को, सारे को, सब चीजों को परीक्षित महाराज को दे दिया और व्रजनाथ को दे दिया। व्रजनाथ तुम संभालो, हम गए चले गए भक्ति के लिए, लास्ट टाइम है ना, उनको मालूम है कि अगर मेरी चेतना बिजनेस में लगी रह गई और शरीर त्याग के समय मैं बिजनेस माइंडेड रहा तो फिर मुझे वापस आना पड़ेगा। इसलिए ये सारे के सारे राजा लोग राज ऋषि कहलाते थे। ऋषि मतलब भक्त, राजा भक्त, इस प्रकार उनकी चेतना होती थी। ऐसी चेतना से क्या होता था, अपने कर्म करते थे विदाउट अटैचमेंट, और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आने के बाद पहुंचने के बाद उसमें उन कामों को त्याग कर वो भक्ति में लीन हो जाते थे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो अभी से ऐसी प्लानिंग करे कि 50 से 55 के बाद उसको अपने बच्चों को स्टैंड करने के बाद अपने को उस परिवार से धीरे धीरे विलग करना चाहिए, अपनी चेतना को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली कॉन्शियस रहे तो उस फैमिली में दोबारा आना पड़ेगा। किस रूप में, किसी भी रूप में, बच्चा बनकर, छिपकली बनकर, कीड़ा बनकर, डॉगी बनकर उसी परिवार पैदा होना पड़ेगा या किसी और परिवार में जाना पड़ेगा। तो जैसे रहेगी चेतना, भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भाव त्वचति अन्ते कलेवरम, जैसी जैसी हमारी चेतना है वैसा वैसा शरीर दूंगा मैं। इसलिए अभी से प्लानिंग करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहते हैं, अभी से ऐसे बैंक अकाउंट, अपने बैंक बैलेंस से बिजनेस को ऐसे सेटल करे कि अभी उस 50 तक की उम्र तक पहुंचते हुए भी वो भक्ति भगवान से जुड़ा रहे, ताकि रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि 50 के बाद छोड़ना है। और जब उस एज में पहुंचू जब बच्चों को मैं सेटल कर दू, शादियां करा दू, उसके बाद क्या करूं, मैं पूरा समय फिर भक्ति में दू, घर से आऊं, भक्ति करूं, सेवा करूं, फिर वापस जाऊं, ताकि मैं भगवान के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो सकूं। नहीं तो आप सब लोग क्योंकि बाहर रहते हो, देखते हो सुबह शाम, एक से एक 80-70-50 साल के बाद भी वृद्ध व्यक्ति अपने घर से अटैच जाता है, ओ बेटा ये कर दियो, ओ बेटा दुकान में आज क्या हुआ, ओ बेटा हिसाब दिखा, है ना, और उसको लगता है मैं सबसे अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैं अभी भी पूछ रहा हूं मैं सबसे अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, अपना नुकसान कर रहा हूं। तो यहां पर गोपाल जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े राजाओं ने भी जो है समय आने पर अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने आचरण से दिखाया। फिर अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उन्हें लाखों वर्ष पूर्व सिखाया सीखा था। यहां पर भगवान कृष्ण ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। राजा जनक, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, बड़े बड़े राजाओं ने अपने कर्मों को किया, राज्य के राज्य संभाले। हम लोग अपने छोटे एक बिजनेस को संभालते, फैमिली को संभालते, फिर बाद में बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है भक्ति करने का। ये राजा पूरे देश को चला रहे थे, उसके बाद भी कृष्ण भावना भावित थे। अम्बरीश महाराज ने क्या किया, इवन परीक्षित महाराज को जब मालूम पड़ा उनको 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी एक तक्षक नाम के सांप के डसने से, तो 7 दिन, आखिरी 7 दिन उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाया फ्लाइट से। ऐसा नहीं किया उन्होंने, जो खाना था जो पीना था वो सब नहीं किया। 7 दिन लगातार वो पहले ऋषि के पास गए, वहां पर शुभदेव महाराज पहुंचे, उनको हाथ जोड़ के बोला कि मैं 7 दिन के अंदर खत्म होने वाला हूं सारा अपना बिजनेस, अपना पूरे पृथ्वी के राजे भी 5000 साल पहले एक ही राजा परीक्षित महाराज पूरी पूछे गए, आज ही अमेरिका प्रशासन हो चुका है। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि मेरे लिए क्या है, क्या चीज होनी चाहिए, मेरे 7 दिन रह गए मरने के, इन 7 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कृष्ण की किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, किससे मेरा लाभ पहुंचेगा। तो फिर शुभदेव महाराज ने उनको कथा सुनाई कि केवल भगवान के विषय में, कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनना चाहिए, भगवान के ही नाम जपना चाहिए। तो बिना खाए बिना पिए बिना सोए लगातार 7 दिन वो कथा करते रहे और ये लगातार 7 दिन सुनते रहे और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा और भगवान ने धाम को प्राप्त किया। हमारे को कितना समय है, हमारे कितना समय बचे, उनकी तो कंफर्मेशन 7 दिन में हुआ, अपने पास टाइम है, वास्तव में हमारे पास भी 7 ही दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेस थर्सडे फ्राइडे संडे, इसी में मरना है हमने, है ना, 8वां दिन तो नहीं है, हमारे भी 7 दिन में मरना है, इसलिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेस संडे इन 7 दिन में भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के विषय में जानना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो देखिए नुकसान क्या है, एक तो डे टू डे लाइफ को जो जी रहे हैं वो बड़ी ही एंजाइटीज के साथ बीतेगी। सबसे पहला नुकसान सुन लीजिए, भक्ति ना करने के नुकसान सुन लीजिए। एक तो जो लाइफ हम जी रहे हैं, चाहे स्टूडेंट लाइफ है, हाउस वाइफ है, बिजनेसमैन है, जो भी हम हैं जिस फील्ड को मैं है, उसके अंदर हमेशा उथल पुथल रहेगी, एक एक दुख हमें बड़ा दुखी करेगा, परेशान करेगा, एक बार। दूसरा, हमेशा विचलित रहेंगे, एजिटेटेड रहेंगे, ओह ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो करना है, ग्रीडीनेस, लोभ बढ़ता जाएगा दिन ब दिन, लोभ के साथ अटैचमेंट होने के कारण डिजायर्स और ज्यादा बढ़ेंगे और ज्यादा भागेंगे आगे, और जब वो चीजें पूरी नहीं होंगी तो छोटी छोटी बात पे रोज घर में बहुत ज्यादा क्रोध आएगा और झगड़े होंगे। इस प्रकार हमारा लाइफ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो मुझे बता रहा हूँ नुकसान है, और इसका अल्टीमेट नुकसान ये है कि शरीर बुरी स्थिति में त्यागने के बाद फिर कोई नई योनि मिलेगी, कहीं ना कहीं जाएंगे जानवर की या मनुष्य की, या फिर नर्कों में तो जाना ही जाना है अपने पापों को करे हुए पाप उसके भुगतने के लिए। लेकिन भगवान कह रहे इतना सुंदर एश्योरेंस दे रहे कि जैसे ही कोई व्यक्ति बोलते हरे कृष्णा, भगवान का नाम लेते ही कम से कम वो कहां नहीं जाएगा, यमलोक नहीं जाएगा, इतना बड़ा बेनिफिट है। शराबी हो कबाबी हो उनके से सारे काम उसने किए, लेकिन भगवान का नाम लेने की वजह से क्या हुआ, कम से कम वो वहां नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूसली भगवान का नाम ले रहा है और जानबूझ के पाप कर रहा है कि मैं वहां जाऊंगा नहीं, नाम ले लेता हूँ, पाप कर लेता नाम ले लेता हूँ, उसको फिर बोलते नाम अपराध, और नाम अपराध पाप से ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जब वो समझ गया बात को, उसने प्राश्चित कर लिया, भगवान से प्रार्थना कर ली, और कई बार हमारी टेंडेंसीज ऐसी होती है कि बार बार पाप हो जाते हैं हमसे, माला करते हुए भगवान को कुछ कर, तो उसके लिए प्रार्थना करें, प्राश्चित करें भगवान से और हरे कृष्ण महामंत्र को जपें, इससे वो पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाए। तो इस प्रकार बेनिफिट ही बेनिफिट है भक्ति करने के, नुकसान कोई नहीं। इसलिए हम लोग जितने लोग जुड़े हैं उनको चाहिए ठीक प्रकार से जुड़े, हरि नाम जरूर लें, और साथ में क्योंकि आप आज यहां पर आए हो तो हो सकता है कल कुछ दूसरी जगह भी जाओ, तीसरी जगह भी जाओ, 36 जगह जाते हैं ना लोग, यहाँ डिमांड पूरी नहीं हुई तो फिर मंदिर चेंज कर लिया, वहां डिमांड पूरी नहीं हुई, पेड़ बदल दिया, पीपल से आज का काम भी चल रहा, चलो इमली के पेड़ के चक्कर लगा लो, तो नाना प्रकार की हम चीजें करते हैं, तो उसका मूज नहीं है। अगर आपने गीता पढ़ ली और कथा सुनी ठीक प्रकार से, तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, किस चीज के लिए जाना मुझे, किससे क्या मांगना है। तो बुद्धू नहीं बना पाएगा आपको, क्या आओ मैं बताऊं तुम्हें भगवान दिखा था पकड़ के, आओ तुम्हें रोशनी दिखाऊं साइड में ले जाके, या आओ मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए खुद पढ़ लो थोड़ा सा, 15-20 मिनट रोज पढ़ लोगे तो कोई बुद्धू नहीं बना पाएगा भक्ति के मामले। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राष्ट्र भगवद गीता की शिल की कई गो, किसी को प्रश्न है ना तो अलग से आगे टाइम क्योंकि हो चुका है, पूछ सकते हैं।